यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय होम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमत इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य निदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय भागवत धर्म की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपदाय ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ವಂಶಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಆಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೇ ಗೌರತ್ವಿಸೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಋಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಾಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮೋ ಹರೇ ರಾಮೋ ರಾಮ ರಾಮೋ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೌರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ಉತ್ಸವ ತೋ ಕಲ್ ಏಕ ತರಹ ಸೇ ಆಖಿರ್ ಕಾ ದಿನ ಥಾ ವೈಸೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕಾ ಜೊ ಮೂಡ್ ಹೈ ಆಜ್ ತಕ್ ಚಲೇಗಾ. ತೋ ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಹಮ್ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಗೌರ್ ಲೀಲಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕುರ್ತೆ ಹಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ ಕಾ ಜೊ ಗೌರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹೈ ಉಸೆ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೆಂಗೆ. ಉತ್ಸವ ತೋ ವೈಸೆ ಹರ್ ದಿನ ಕಾ ಹೈ, ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಲೇ ಹರ್ ದಿನ ಏಕ ಉತ್ಸವ ಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಬಾರಿ ನಜರ್ ಸೇ ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕೋ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭೇಚ್ಛಾ. ಔರ್ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಸಬ್ ಆಯೇ ಹೈ ಹಾಂ, ಬಹುತ್ ಗೌರ್ ಲೀಲಾ ತೋ ಕಹಿ ದಿನೋ ಸೇ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಇಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಅಂತ ಹೈ ನಹೀ. ಏಕ ಅಚ್ಛಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ ಏಕ ಐಸಾ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಜಹಾಂ ಪೆ ಜಬ್ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆತೆ ಹೈ ಔರ್ ಗಂಗಾ ಕೆ ತಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ, ಔರ್ ವೋ ಸಬ್ ಸಾಧು ಸಂತ ಸಬ್ ಜಗಹ ಸೇ ಆತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಪತಾ ಚಲತಾ ಹೈ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯೆ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಕೆ ಲಿಯೆ. तो सभी लगे से सब ग्रह से सब लोग आ गए हैं. तो देवतागण को भी इच्छा हो गई कि हमें भी भागवत. तो उन्होंने आके कहा कि हम स्वर्ग की अमृत देंगे, इसके बदले में आप हमें भागवत का अमृत. तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत नकार दिया उसे. स्वर्ग के अमृत को भागवत के अमृत के साथ तुलना नहीं कर सकते आप. ये सच है कि स्वर्ग का अमृत है आपकी आयु को बढ़ा सकता है, लेकिन भागवत अमृत जो है वो ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है. आपकी चेतना की विकसित होगी और हमेशा के लिए इस भौतिक संसार से मुक्त. इसलिए उन्होंने देवतागण को बोला कि ये आप स्वर्ग के अमृत के साथ इसकी तुलना मत करना, ये बहुत बड़ा अपराध है. तो उस तरह से देखें तो कहीं लीलाएं हमने सुना है, तो भागवत लीला और गौर लीला में कोई अंतर नहीं है. वही भगवान कृष्ण जब आते हैं यहाँ पे तो अपने पार्षद को सब लेके आते हैं. कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ उनके साथ आते हैं. तो ही कृष्ण की लीला ही है, लेकिन फिर भी उसमें एक खास अंतर है. उसके विषय में हमने आज ये श्लोक को चुना है कि क्या ऐसी विशेष बात है कि गौरांग महाप्रभु के अवतार में he was there, Prabhu? Where is there, right? Yeah, sorry. I'll just one. Let me also. We can chant this verse. Yes, I'll chant, and you can all chant. Anarpita charim chirata karunaya vatirna kalo. Samarpayitum unnato jalarasam svabhakti shriyam. Hari purata sundara duti kadamba sandipita. Sadhardaya kandare spuratu o sachinandana. I think we all can chant together once more. Anarpita charim chirata karunaya vatirna kalo samarpayitum unnato jolasam shivakti shriyam hari purata sundara dviti kadamba sandipita sadardaya kandare spuratu o sachinandana anarpita charim chirata karunaya vatirna kalo samarpayitum unnato jalarasam svabhakti shriyam Haripurata sundara duti kadamba sandipita sadardaya kandare spuratu o sachinandana. तो ये श्लोक रूप गोस्वामी लिखित हैं और इसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में जो कोई भी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान देते हैं कि हमेशा आपके हृदय में जो सची सुथ भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं आपके हृदय में हमेशा रहे सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वो सची नंदना यानी हम सबके लिए वरदान दे रहे हैं हमेशा आपके हृदय में रहे लेकिन विशेष क्या है वो क्या देना चाहते हैं समर्पयितुम उन्नतो जल रसम स्वभक्ति श्रीयम समर्पयितुम उन्नतो ज्वला भगवान के प्रेम के कई रस हैं लेकिन सब रसों में एक बहुत ही ऊंचा रस है उन्नतो ज्वला सबसे बड़ा अनार्पित चरिम चिरटक कभी ऐसे कोई अवतार ने दिया नहीं है अनार्पित चरिम चिराट कभी बहुत बहुत नहीं दिया है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कौन से अवतार है करुणा अवतीर्ण कलोक इतने करुणा के अवतार ऐसे कोई अवतार नहीं यह है इस श्लोक का अनुवाद तो इसलिए भगवान के अनेक रूप हैं अनेक अवतार हैं उसमें से विशेषकर यह अवतार को क्यों ऐसे बताया गया है कि कभी ऐसे नहीं अनार्पित चरिम रूप को स्वयं बता रहे हैं ऐसे कभी नहीं हुआ नमो महावदन्याय तो इसलिए इसको समझने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद बता रहे हैं कि वैसे अवतार तो युगों युगों में होते हैं तो जब गौरांग महाप्रभु भी अवतरित हुए एक तरह से युग अवतार हैं लेकिन अलग हैं क्यों अलग हैं कि जब भी आते हैं अवतार तो उनके कुछ कारण होता है उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य के लिए आते हैं उद्देश्य को लेके आते हैं उसके लिए उस तरफ के रूप धारण करते हैं तो तीन बाहरी कारण हैं तीन अंदरूनी कारण हैं हम अंदरूनी कारण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे सिर्फ बाहरी कारण है पहला कारण है कि जब 500 साल पहले नवद्वीप में इतना ही भोगवाद ऐसे नहीं कि भोगवाद कल अभी चल रहा है 500 साल पहले भी चल रहा था लेकिन उनका अलग था आज का तो भोगवाद बहुत ही गिरा हुआ है लेकिन वहाँ ऐसे लोग थे बहुत क्या बोलते विद्वान लोग पंडित लोग ब्राह्मण और ऐसे कार्य में लगे हुए थे लेकिन भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था या भक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। तो अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हुआ कि कुछ वैष्णव लोग थे उनको बहुत दुख हो रहा था कि शास्त्र सब जानते थे लेकिन कुछ अलग ही निष्कर्ष निकालते थे। अगर कोई मंत्र जप हो रहा तो उसको एक पुण्य समझ कर करते थे। गंगा के तट पर बहुत सारे ऐसे मेला होती थी लेकिन एक पुण्य या पाप को नष्ट करने के लिए ऐसे, लेकिन कोई और कोई नहीं करता था। तो इस हालत में अद्वैत आचार्य ने पुकारा था, इसके लिए ये कारण हुआ पहला कि उन्होंने शालिग्राम शिला का पूजा करते उन्होंने पुकारा, सिर्फ आप ही आए घे तो लोगों का उद्धार होगा। तो दूसरा कारण था, जब अवतार आते हैं हर एक युग में, सतयुग हो या त्रेता युग हो या द्वापर युग हो या कलयुग में, एक युग अवतार होते, वो आते हैं और वो युग धर्म का स्थापना करते। तो इस तरह से युग धर्म था हरिनाम संकीर्तन, तो उसके लिए अवतार आते। ये तो हर युग में होता है, तो कलयुग में होता है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीसरा जो कारण है वो कारण ये श्लोक है। जब भगवान हमेशा ऐसे अवतारित लेके आते हैं फिर चले जाते हैं, तो इस बार जब वो चले गए, यानी जब भगवान कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, तो उसके बाद जब चले गए तो उन्होंने अपनी लीलाएं सब रचाई यहाँ पे। तो उसके बाद वो सोचने लगे कि बहुत समय हुआ कि अब तक लोग अपने वैदी भक्ति से मुझे प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या मिलेगा, एकदम शुद्ध भी हो तो उनको मिलेगा ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव यानी वैकुंठ भाव। इतना याद रखना कि ऐश्वर्य भाव वैकुंठ भाव कोई नीचा नहीं है, लेकिन विशेषता क्या है उसकी तुलना करने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि ऐश्वर्य भाव होता है जो वैकुंठ का भाव होता है, लेकिन भगवान के प्रसन्न, उनकी जो एक प्रसन्नता होती है वो उस भाव से भी ऊपर होता है जो हम जानते हैं कि उनका साक्य भाव होता है, दास्य भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, माधुर्य। तो वो जो स्वाद है, वो जो मिठास है, उसे देना चाहते थे हम। ये हमेशा नहीं होता है, ये ब्रह्मा जी के दिन में एक बार ही होता है ऐसे। तो 5000 साल पहले कृष्ण आए, उसके बाद में 500 साल पहले गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए। इससे पहले जितने भी गौरांग महाप्रभु या कृष्ण जब आते हैं कोई दूसरे युग में, तो ये जरूरी नहीं है कि कृष्ण स्वयं आते हैं, उनके अवतार, उनके विस्तारित रूप से भी अवतार आ जाते। लेकिन ये जो गौरांग महाप्रभु है स्वयं कृष्ण, क्यों? क्योंकि अगर उन्न तो ज्वला रसम देना है तो और कोई अवतार दे नहीं सकते, स्वयं उनको ही आना पड़ता है। तो वो खुद आते, और वो किस रूप में आते हैं? एक भक्त के रूप में आते हैं। स्वयं आते हैं लेकिन भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को दिखाएंगे तो ही कैसे करना है बोल भी सकते हैं ना दूसरों को क्या करना चाहिए, अगर हम ही खुद नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो इसलिए वो खुद आके वो खुद दिखाने लगे कि ऐसा किया जाता है। तो ये है मानता, और ये इस श्लोक में रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि अनार्पित यानी कभी नहीं हुआ है, बहुत बहुत पुरातन। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से इस अपने ग्रंथ में इसे वो उल्लेख करते हैं। तो इस जो वैकुंठ जो भाव है, अगर उन्नत ये जो दूसरा ऊंचा रस को अगर समझना है तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी है कि जब ऐश्वर्य भाव होता है, ऐश्वर्य भाव में ज्यादा से ज्यादा एक तरह का मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, ऐश्वर्य भाव ही है, जैसे जहाँ वैकुंठ में जाते हैं तो सामिप्य है, साष्टि है, सालोक्य है, स्वारूप्य है, सायुज्य है, उसके लिए कोई भक्त उसकी अपेक्षा नहीं करता क्योंकि वो एक निराकार। लेकिन दूसरे जो हैं वो मुक्ति भी प्रदान हो जाता है, लेकिन जो माधुर्य भाव है, यानी जितने सब रस में जो माधुर्य भाव है, जो बहुत ही एक गुह्य भाव है, इसलिए हमारे देश में अभी भी इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं, विशेषकर राधा और कृष्णा का जो संबंध है, इसके बारे में जो दिखाया जाता है लोग की समझ है, ऐसे लगता है कि अरे कृष्ण कर सकते हैं, इतने उनकी इतने गोपियाँ थी, गोपियाओं के साथ नृत्य करते हैं, तो इसलिए बहुत कुछ गलत फहमियाँ है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग में देखा जाए तो वो जो माधुर्य रस है सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, ने उसमें थोड़ा भी ये भावना नहीं है कि जो हम भौतिक संसार में अनुभव करते हैं, जो एक पुरुष और स्त्री का आकर्षण होता है उसमें एक क्षण मात्रा भी नहीं हो, पूरा प्रेम, शुद्ध प्रेम, लेकिन हमारे अनुभव के बाहर है इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए जिनको नहीं मालूम तो लोग उसके गलत, विशेषकर राधा और कृष्ण के जो लीला हैं उसके बारे में बहुत सारे गलत फहमियाँ, लेकिन वो वैसे नहीं हैं और ये बहुत ही एक ऊंचा। इसलिए कई बार बताया जाता है कि भक्ति के जो प्रेम के जो लक्षण होते हैं, तो ज़्यादा करके संत पुरुषों को ऐसे ही बताया गया है ना कि पागल हैं। हाँ, वैसे हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, हमारे दोस्त लोग, मित्र लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है ना। हाँ, लेकिन सही तरह का जो एक भाव होता है, पागल पागल भाव है ने, निरंतर भगवान के नाम का जप और कुछ नहीं, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम को तो पागल कहते थे, और वैसे ही हमारे दक्षिण भारत में पुरंदर दास, कनक दास, और गुजरात में नरसिंह मेहता, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो आए थे तभी भी नवदीप में, कितने जब वो पहले उन्होंने अपना सच्चा रूप नहीं दिखाया था, बाद में जब भक्त बन गए तो नाचते गाते रोते हैं, तो ये क्या चढ़ गया, इसके सर में कुछ वात बढ़ गया होगा, ये खुद तो पागल हो गया है, अभी ये नवदीप में सबको पागल कर रहा है, यानी किसी को समझ में नहीं आया कि क्या है। तो वैसे भक्तों का ये बहुत बड़ा एक ऊंचा लक्ष्य है कि अगर इस तरह का पागलपन आना है तो बहुत अच्छा पागलपन है। हाँ, नहीं तो पागलपन माया के पागल में भी पागलपन ही है। अगर संसार में हम देखते हैं ऐसे नहीं कि पागल नहीं है, पूरी तरह से एक भौतिक संसार के शक्ति में पूरी तरह से मिट जाना, उसी में पूरा मेहनत करके उसी में एक पूरा जीवन को मिटा देना, ये भी एक तरह का पागलपन है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही हाँ दुर्लभ होता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए अगर ज्ञान नहीं है तो ये इसी तरह से पागलपन में चला जाएगा। तो ये पागलपन को बहुत बड़ा, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने कुछ हम लीला इससे संबंधित हम कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन ये लीला को ऐसे नहीं समझना है कि अरे ये लीला तो किसके लिए है, ये सब लीला में सिर्फ हमें सीखने के लिए ही है, हमारे लिए ही है, ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ है हम सुन रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, उनका तो सिर्फ इच्छा यही था कि उद्धार करना, सबका उद्धार करना, आपने वो सुना होगा, ये बहुत सारे कई दिनों से आप लोग सुन रहे हो, सकता है वही बार बार सुन रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये अमृत है, तो अमृत का जो बार बार सुनेंगे तो भी कभी उसका स्वाद कम नहीं होना चाहिए, तो सुना है तो भी फिर से सुनेंगे तो भी अच्छा ही है। तो उनका सिर्फ इच्छा यही थी कि हर सबका उद्धार करें, एक तो उन्होंने तो सबको देने की प्रयास, सबको देने के, लेकिन उसमें भी कुछ लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, खास करके जो ब्राह्मण वर्ग के थे। तो जब एक बार गौरांग महाप्रभु गोपियों का नाम बुलाते तो कुछ ब्राह्मण को लग रहा था ये क्या गोपियों का नाम ले रहे हैं, कि उनको गोपियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हाँ, भगवान हरि का नाम लेना चाहिए, तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हें हरि का नाम लेना चाहिए, गौरांग महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, कौन हो हरि जिन्होंने वाली को पीछे से मारा था, मैं ऐसे कैसे लूंगा। तो इतना क्रोधित हो के वो उस ब्राह्मण के पीछे दौड़ने लगे मारने के लिए। वो ब्राह्मण इतना डर डर के भक्तों के सम्मेलन में गया और कहने लगा, ये पागल हो गया है, आज मुझे मारने आ गया है। जो तभी उन्होंने सोचा कि लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे अगर मैं इस एक ग्रस्त थे तभी हो गौरांग महाप्रभु, तो उन्होंने संन्यास लिया सिर्फ सबके उद्धार करने के लिए। ऐसे लोगों को भी उद्धार होना चाहिए, इसलिए वहां तक पहुंचना चाहिए। तो फिर जब हो वृंदावन के मार्ग में जाते समय पहली बार जब वाराणसी आए, तो उनके खास तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य ने उनको कहा कि आपके बारे में यहाँ पे निंदा हो रही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते हैं हाथ ऊपर नृत्य करना, रोना, गाना। तो जहाँ के मायावादी थे वहाँ पे, क्योंकि वाराणसी बहुत ही प्रख्यात है, वाराणसी में वेदांत का पठन करना और ध्यान लगाना, ऐसे लोग सब बैठे हैं देखते हैं कि ये सन्यासी ऐसे क्यों कर रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना, थोड़े मुस्कुराए, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, वहां से वो गए सीधा वृंदावन गए। लेकिन वृंदावन से वापस आए वाराणसी, तभी उनको एक आमंत्रण मिला। एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं ये मायावादी लोगों को भी घर बुलाया है प्रसाद के लिए, तो आप भी आए। तो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए किया कि उन्होंने लगा कि ये एक मौका है अभी। तो जब उन्होंने घर प्रवेश किया तो सब मायावादी सन्यासी लोग बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया, तो जहाँ पे लोग पैर हाथ धोते थे वो जाकर वहीं पे जाकर बैठ गए। लेकिन उनका जो तेज था, तेज से मायावादी सन्यासी इतने आकर्षित हो गए, क्योंकि वो तेज से ही आकर्षित होते हैं, हाँ वो रूप से नहीं आकर्षित, तेज से। तो उन लोगों को कुछ अजीब लगा इनको, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो उनके प्रमुख थे उन्होंने उनको अपने हाथ से पकड़कर, आप यहाँ नहीं बैठना चाहिए, उनको लेके जाके उनके पास बिठाया। फिर उन्होंने सवाल किया कि आप तो हमारे जैसे ही है, सन्यासी है, आप शंकराचार्य सरस्वती के जो पंथ है उसमें आपने सन्यास लिया है, तो फिर ये आपको शोभा नहीं देता है, ये क्या है आपको? आप रास्ते में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे एक बहुत भावुकता है ये, आपको तो वेदांत का पठन करना चाहिए हमारे साथ बैठकर, आपको ध्यान लगाना चाहिए। तो तभी चैतन्य महाप्रभु तभी बोलते हैं, तो ये श्लोक है, चैतन्य आदि लीला में आता है, दिस इज फ्रॉम सेवेंथ चैप्टर सेवन या दिस इज तो जब प्रकाशन सरस्वती ऐसे सवाल करते हैं तो उनको ये जवाब देते हैं, दिस इज सेवेंथ चैप्टर 71st वर्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, प्रभु कहे सुना श्रीपादियारा कारणा, गुरु मोरे मूर्खा देखी करीला शासना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रकाशन सरस्वती को, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वरपुरी के शिष्य थे, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो। अभी हमें सब मालूम है कि जब निमाय पंडित बोल के नवदीप में थे वो, और पहली बार जब ईश्वरपुरी आए थे, उनका जो पहले मुलाकात हुआ था, तो ईश्वरपुरी जानते थे कि ये निमाय बहुत ही विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है। तो उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था कृष्ण लीलामृत, तो उन्होंने निमाय को कहा कि तुम बहुत विद्वान हो, तो इसमें से जरा देखो क्या है, कुछ उसमें टूटी है, कुछ गलतियां हैं मुझे। तो निमाय पंडित ने कहा, नहीं 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 आप खुद विद्वान हैं, आप कैसे गलती कर सकते, नहीं नहीं लेकिन तुम बहुत कुछ अच्छी जानते हो शास्त्र के बारे में, मैं तुम्हारे से सुनना चाहता हूँ। ये ईश्वरपुरी ने निमाय जब नवद्वीप में थे, तो निमाय ने ठीक है, उन्होंने ग्रंथ की पूरी देखा और उन्होंने कुछ गलतियां निकाली। आपको मालूम होना चाहिए कि निमाय पंडित इसके लिए बहुत ही, कोई भी स्कॉलर उनके सामने आते नहीं थे, बड़े बड़े भट्टाचार्य, मिश्रा, चटर्जी, ये लोग कोई नहीं आते थे सामने, क्योंकि मालूम था कि इसके लड़के के सामने जाएगा या हमें हरा देगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती निकाला और ईश्वरपुरी ने लिया, स्वीकार किया और दूसरे दिन आकर बोला, नहीं मैंने अच्छी तरह से मैंने खुद पढ़ा फिर से, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो लिखा है वही सही है, तुम गलत है। तो निमाय पंडित पहली बार उनको किसी ने हराया और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार किया, बहुत अच्छा, खुश हो गए एकदम। तो ये थे निमाय पंडित। और यही जब गाया जाने के बाद जब उनकी मुलाकात फिर से होती है ईश्वरपुरी के साथ, और तब वो उनसे, क्योंकि उनको ईश्वरपुरी के का संग बहुत अच्छा लगता था और निमाय पंडित, तभी उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ईश्वरपुरी देख के उनको पता चलता है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, इनकी क्या मैं दीक्षा दूँ, मैं इनकी गुरु कैसे बन सकता हूँ, अगर ये ऐसा है उनका संबंध तो फिर गुरु कैसे बोल सकता है कि तुम मूर्ख हो। सच ये है कि ईश्वरपुरी ने कभी कहा ही नहीं था, तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं हमें मूर्ख, ये हमारे लिए बता रहे, सबके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ कर विशेष वो मायावादी सन्यासियों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो वेद पाठ करके ध्यान लगा के हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, जो इस युग में नामुमकिन है, अगर जो नामुमकिन है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, मूर्ख ही कहेंगे ना, जो प्रयास कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता है। तो वो इनडायरेक्टली बताना चाहते थे, उनको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम ले सकते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम मूर्ख है, मूर्ख का मतलब ये नहीं कि मूर्ख तेरा व्यवहार करना है, लेकिन इस मार्ग में, इस ज्ञान के इस आश्रय में अगर ये भावना नहीं रहेगी तो फिर हमें प्रगति करना मुश्किल है। उन्होंने क्या कहा, मेरे गुरु ने कहा तो मूर्ख हो, तुम सिर्फ भगवान का नाम जाप करो। तो इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया और फिर मैंने भगवान का नाम जाप किया। तो हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आएगा, अरे तो इसका मतलब है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या सिर्फ भगवान के नाम जाप करने से सब हो सकता है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो फिर सत्ययुग में कोई इसके बारे में क्यों नहीं बताया, त्रेता युग में क्यों नहीं बताया, द्वापर युग में नहीं बताया, लेकिन यहां तो बताया जाता है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये सबसे श्रेष्ठ रस है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति है तो फिर सतयुग में क्यों? तो उसके लिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो सतयुग के लोग रहते थे उन लोग में उस तरह की क्षमता थी, उन लोग इस तरह की तपस्या कर सकते थे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे सुना है कि वाल्मीकि मुनि कैसे उन्होंने, जो वाल्मीकि बाद में बन गए हो, और वैसे जो असुर हैं वो भी इस तरह की तपस्या करते थे, जैसे हिरण्यकश्यप, उनके शरीर को छींटी भी काट कर खा जाता था और सिर्फ उनकी हड्डियां रह जाती थी। तो उन ऐसे क्षमता होते समय अगर कोई उनको कहेगा कि भगवान का नाम जाप करो, कीर्तन करो, तो सब कुछ कोई स्वीकार करेगा? हाँ, जैसे अभी दसवीं का एग्जाम चल रहा है ना, हमारे दसवीं कक्षा के जो अच्छे जो अच्छा स्कॉलर है उसको आप सेकेंड स्टैंडर्ड का एक पेपर देके बोलते चलो इसको सॉल्व करो। अरे वो तो 10th स्टैंडर्ड का प्रिपेयर किया और उसको सेकेंड स्टैंडर्ड का दे रहे, बोलते ये क्या है, कोई चैलेंज ही नहीं है इसमें। अगर उसको 12th स्टैंडर्ड का देगा तो कुछ तो होगा, अरे इसमें कुछ चैलेंज है। तो उसी तरह से हरि नाम की शक्ति तो हमेशा के लिए है, तभी भी सतयुग में भी थी, लेकिन उन दिनों में लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये क्या है। लेकिन कलयुग, हाँ प्रायण अल्प आयुषा, आपको सब जानते हैं कि कलयुग में किस तरह का, हाँ मंद सुमंद भाग्य, मंद भाग्य उपाद्रता, सब लोग इतने चिंता में हैं, इतने मानसिक त्रस्त हैं, तो उन लोगों को बोलना कि वेदांत का पठन करो, ध्यान लगाओ। हमें तो जोर से जाप करते हैं हम, क्योंकि जोर से नहीं करेंगे तो नींद आती है, एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते बराबर से, मन उधर इधर जाता है। हाँ ये हालत है, और उसमें अगर वेदांत का पठन करो या हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत पठन नहीं करोगे, तुमसे भगवान का नाम जाप करो। तो जैसे उन्होंने किया तो उनके शरीर में इस तरह के भाव आने लगे, तो वो भाव तो बहुत भक्ति के बहुत ऊंचे भाव हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, मैं इतने साल से जाप कर रहा हूँ, मेरे शरीर में तो नहीं आ रहे ऐसे। तो तभी ये सवाल आता है कि किस तरह से जाप कर रहे हैं। भगवान का ये सच है कि बहुत ही साधारण लग रहा है, अरे सिर्फ भगवान का नाम जाप करना है, कीर्तन करना है, लेकिन कैसे जाप करेगी। तो ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सिर्फ जाप करना ही नहीं, लेकिन किस भाव से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, जिस तरह से एक बच्चा माँ को पुकारता है, हाँ जैसे है ना, अगर बच्चा माँ के सामने नहीं भी है लेकिन बच्चे के आवाज़ से पता चलता है कि वो मुझे पुकार रहा है या ऐसे ही नकल कर रहा है। हाँ है ना, एक कथा है ना, एक बार बच्चा माँ रसोई घर में थी और बच्चा अपने सोया था, वहाँ से गिर गया, तो जैसे गिर गया तो रोने लगा वो, तो रोने लगा तो माँ रसोई घर से भाग के आई और उसको उठा लिया, उसकी चुम्बन किया, ये किया, उसको ये खिलाया, मिठाई खिलाया, ये खिलाया, तो बच्चा एकदम प्रसन्न हो गया, अरे मैं सिर्फ गिर गया और रोने लगा और माँ आके। तो दूसरे दिन वो चलो ऐसे नकल करते हैं, तो सीधा ऐसे पलटी मार दिया, गिर गया, ऐसे नकल किया, गिर गया और रोने लगा। तो रुते माँ नहीं आ रही है, जोर से रोने लगा, नहीं आ रही, और जोर से रोने लगा, तो और जोर से रोने गया, तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम, अरे इस बार तो क्यों रो रहे पूछ रही है, मैं रो रहा हूं और कल रो रहे तुम, क्योंकि वो पहचान लिया कि ये जो अभी रोना है ये नकली है, तो इसलिए आकर्षित नहीं हो। तो इसी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का नाम उच्चार करने से भगवान, हम सब जानते हैं कि किस भाव से हम करते हैं, लेकिन जब ऐसा भाव आएगा कि संसार में बहुत कुछ मैंने किया लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे सुख नहीं है, पूरी तरह से ऐसा लगेगा बस अभी खाली एक ही रह गया है कि हर एक समस्या के लिए भगवान का नाम, तभी वो नाम में, हाँ नहीं तो फिर हमारे भक्त लोग कहते हैं कि जो पिस्तौल की जो गोली होती है ना, दो तरह की होती है, एक असली होती है और एक नकली होती है। जब असली गोली चलता है आवाज़ तो आता है जोर से एकदम, और सामने वाले को मार डालता है, लेकिन जो फिल्मों में जब आवाज़ आती है पिस्तौल चलाते हैं उसमें भी ऐसे ही जोर से आवाज़ आता है और सामने वाला गिर जाता है लेकिन मरता नहीं है वो। तो उसी तरह से ये सिर्फ समझाने के लिए कि अरे सिर्फ भगवान का नाम जाप करना है, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ये सब लक्षण आ गए हैं, तो हमारे मैं इतने साल से जाप कर रहा हूँ कुछ कुछ नहीं आ रहे, उल्टा नींद आती है जाप करते समय, तो क्योंकि हमने सही तरह से किस तरह से पुकारना है उच्चार, इसको ध्यान पूरा करना चाहिए ये स्थिति में, लेकिन जब निस्साय भाव से जब पुकारते हैं तो तभी उसका सही तरह का एक, तो ये इस लीला में, वाराणसी के जो लीला है प्रकाशन सरस्वती में, कहने का ये सिर्फ अर्थ यही है कि उन्होंने मूर्ख कहा और भगवान का नाम जाप करना है, यही है सब है, तो कैसे समझे? तो फिर ये भी सवाल आ सकता है, अरे सिर्फ भगवान का नाम ही जाप करना है तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत है? भगवान का नाम तो सब तरह मिल रहा है, तो मैं जाप कर रहा हूं तो दीक्षा की क्या जरूरत है? हाँ, तो इसके लिए भी समझना चाहिए कि जब हम ये सच है कि गुरु के आदेशों को पालन करना ये ज्यादा दीक्षा से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन दीक्षा देते समय हमें पूरी परंपरा की एक शक्ति आ जाती है वो भगवान के नाम जाप करने में, तो इसलिए दीक्षा लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से कलयुग में एक तरह एक आसान है देखा जाए तो, जैसे मैंने बताया सतयुग में भगवान का नाम जाप करना आसान नहीं है, अरे तो क्या इतना सिंपल है, क्योंकि उनकी क्षमता इतनी बड़ी। लेकिन कलयुग में अगर देखा जाए, किसी से भी आप पूछो, हर एक में आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, कुछ ना कुछ त्रस्त है, फ्रस्ट्रेटेड है, दुख है, चिंता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को कुछ है ही नहीं है। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, अरे नहीं जम रहा है, और वातावरण, बाप रे, वातावरण में जो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ अनुकूल नहीं है। तो उस तरह देखा जाए तो कीर्तन, हरिनाम आसान भी है और लेने का अच्छा एक अवसर है, खाली पुकारना है बच्चे की तरह। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि बहुत जो देवतागण है, हम तो हमेशा कलयुग को दोष देते रहते हैं, ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है, कलयुग ऐसे है। ये भी सच है ना, अगर पेपर पढ़ेंगे तो कलयुग में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन देवतागण लाइन में खड़े हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए, इसलिए कि कलयुग में जो एक अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे युगों में नहीं है, बहुत ही आसानी से। तो ये सवाल भी आएगा कि ओ इसका मतलब है सिर्फ भगवान का नाम जाप करना है और निश्चय भाव से करना है, तो फिर वेद वीद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वेद पठन नहीं बोला आपने, और ध्यान ध्यान तो समझ में आया कि ध्यान करना तो बहुत मुश्किल। ये नहीं है कि बस सिर्फ भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। कर सकते हैं पूरा दिन बैठ के भगवान का नाम जाप कर सकते हैं? हरिदास ठाकुर जैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे ऐसे सारे विषय विचार है, जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा तो हम बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने विशेषकर कहा है कि भगवान का नाम जाप करना, उसके साथ पंचरात्रि का विधि को भी अपनाना। पंचरात्रि का विधि है भगवान की विग्रह की सेवा। जो जब भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं तो मन शुद्ध होता है, तो उस अवस्था में भगवान का नाम लेना आसान हो जाता है। तो ये कलयुग के वरदान है, उसके साथ ये नहीं समझना है कि सिर्फ भगवान का नाम ही है तो फिर ये गलत है। और वेदों का जो पठन है हमारे लिए, वेद पठन यानी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वेदांत जो वेदांत सूत्र का अगर टीका, एक बार ऐसे चर्चा भी होगा थी गौड़िया मठ में, इन्होंने कोई टीका नहीं है इसलिए लोग प्रामाणिक नहीं, लेकिन हमारे लिए टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम सुनना, भगवद गीता सुनना और हरिनाम और कीर्तन और भक्तों का संग, वैष्णव सेवा, जो सतयुग में इतना मुश्किल काम है, वो सिर्फ इतने ऐसे कार्य से, और क्या परिणाम क्या है? उन्नतो ज्वला समर्पितुम उन्नतो उज्ज्वला। तो इसके लिए गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है उसे विशेष बताइए, कोई साधारण नहीं है। तो गौर पूर्णिमा कल हुआ, लेकिन होने के बाद आज हम ऐसा सुन रहे हैं, तो फिर अगले गौर पूर्णिमा में याद रखना कि ये कोई साधारण उत्सव नहीं है, इसमें किस तरह से भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो लीला सुनना, लेकिन लीला के पीछे कुछ आचार्यों से सुनना चाहिए तभी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता, नहीं तो क्या है वो मायावादी प्रकाशन सरस्वती। यहाँ उसके बाद बहुत कुछ हो गया, चैतन्य महाप्रभु के इस भाव से सब मायावादी लोग बदल गए। हाँ, मायावादी लोग सब लोगों को उनको उनकी उनके बोलने से, क्योंकि उनमें वैसी शक्ति थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रत्यक्ष थे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको ऐसे, ऐसा भी किया उन्होंने कई लोगों में, जैसे वो झारखंड में जा रहे थे तो पशुओं लोगों का भी हृदय बदल दिया। हाँ, शेर और हिरण एक दूसरे से आलिंगन करने लगे सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर, उनकी आंखों में आंसू लग गए। आप सोच सकते हैं ऐसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने किया। और वैसे ही नहीं, जब भी वो जाते थे ऐसे दक्षिण भारत में, ऐसे कोई लोग दूर से उनको देखते थे, सिर्फ देख के उनके हृदय में भक्ति जाग जाती थी। कितना अच्छा है ना अगर ऐसा हो जाएगा तो, खाली देखना दर्शन करना और पूरा शुद्ध हो गए और भक्ति जाग गई, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास। और वो व्यक्ति जो दूर से देखा और उसमें इतना भाव आता है, वो अपने गांव चले जाते हैं तो उसके गांव वाले उसको देख के उनके हृदय में भक्ति जाग जाती है। जैसे कोरोना में बीमारी फैलती थी ना ऐसे, हाँ यहाँ से आदमी वहां चला गया, अरे उधर फैला गया, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये इसने यहाँ से लेके आया, इधर से लेके आया। तो उसी तरह से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि हर एक के साथ, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पंडितों को, ब्राह्मणों को, और उन्होंने सब लोगों को दिया। हाँ, जैसे सब लोगों को नहीं, जितने जितने न जात न देखा उन्होंने, जैसे हरिदास ठाकुर जैसे को आचार्य बना दिया। हाँ, और रूप गोस्वामी सनक, ऐसे लोगों के द्वारा उन्होंने समाज में ऐसे कुछ जाति के बारे में भेदभाव कुछ न करते हुए ये दिया, क्योंकि कलयुग में किसी के पास भी कुछ ऐसे योग्यता नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बोल सकता है या कोई अपने, सिर्फ गुण के प्रभाव से बनते हैं, तो उन्होंने ये दिया। तो ये उनकी मान्यता थी। तो इसी संदर्भ में और एक ऐसा एक लीला है, इससे भी हम सीख सकते हैं कि कैसे अगर अहंकार हो तो किस तरह से एक बहुत बड़ा एक रुकावट हो जाती है भक्ति के लिए। जो जब निमाय पंडित थे वहाँ पे, तो 14 साल के थे वो, और उन्हें इतना एक्सपर्ट थे वो ग्रामर में विशेषकर और शास्त्रों में, तो कोई भी भक्त लोग भी कभी सामने नहीं आते थे उनके, बिकॉज वो आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे डिबेट करेंगे और उनको हार देंगे, तो उनको दूर दूर से देख के चले जाते थे, कोई सामने आता नहीं था। सब लोग बहुत प्रेम करते थे उनसे, लेकिन भट्टाचार्य लोग कोई नहीं आएंगे सामने, क्योंकि ये उनका अलग ही है। तो जब निमाय जब भक्तों को देखते थे कि देखो वो मुकुंद आ रहे हैं, लेकिन मुझे देख के उसने सिर घुमा लिया और उधर से चला गया, तो निमाय बोलते थे मुकुंद याद रखना, एक दिन मैं भी ऐसा भक्त बनूंगा। लेकिन आज के दिन वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो विद्वान जैसे कर रहे थे, लेकिन विद्वान होते हुए भी उन्होंने कैसे बहुत गुह्य लीला दिखाया। हाँ, वो तो भगवान थे। हाँ, गाया जाने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उससे पहले जब पंडित थे तभी भी उन्होंने एक बहुत अच्छा लीला किया। तो उन दिनों में जैसे मैंने पहले बताया, नवद्वीप में जो कुछ भी बड़ा बड़ा डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, जैसे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स इतना नाम होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच जैसे बहुत बड़ा डिबेट, हजारों लोग जाके देखने के लिए, तो नवद्वीप में उन दोनों में फेमस किए था डिबेट। तो यानी डिबेट जाके कोई सुनना है तो वो भी विद्वान होना चाहिए ना, उसको कोई टेस्ट नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना प्रेरित करते थे लोग, बैठे हैं और लोगों का ग्रुप, कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वाद विवाद हो रहा है, डिबेट हो रहा है। तो ऐसा था नवदीप। तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा फेमस और भी एकदम नाम, उसका नाम था दिग्विजय केशव कश्मीरी। हाँ देखो कश्मीर से आया था वो, आज कश्मीर के बारे में बहुत, हाँ बहुत कुछ चर्चा हो रही है, तो कश्मीर का पंडित था वो। तो उन दिनों में कश्मीर के ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसे, तो इसमें से ये पंडित तो इतना पावरफुल था कि उसके जबान के ऊपर सरस्वती हमेशा रहती थी। अब सोचिए किसी के जबान में सरस्वती है, उसके उसकी क्या सामना करेगी आप, उनकी सरस्वती की पूजा कर रहा था वो। तो तो वो आ रहा है बोल के नवदीप में आवाज आ गई सब लोग। तो ये और उसका क्या था स्टाइल, बहुत ही अलग स्टाइल था। वो अपने दिग्विजय पत्र को लेके जा रहा था, चलो मेरे सामने, वो बड़े बड़े उनको चैलेंज करता था, अगर चैलेंज नहीं करते हो तो फिर इसमें सही कर दो कि मैं हार गया। तो इस बेशर्मी से बचने के लिए नवदीप से सब लोग कुछ ना कुछ बहाना बनकर वहां से भाग गए। सब भट्टाचार्य, चटर्जी, मिश्रा, वो सब बोलते मेरा वो काम है, ये काम है, बोल के अभी आएगा तो सामना का, सामने तो हारेंगे, अगर तो लिख के भी देना पड़ेगा, इसलिए सब भाग गए। तो ये निमाय पंडित के जो शिष्य थे उनके वहां तक पहुंच गया। तो वो आके उनको बताया कि ऐसा ऐसा कोई आया है। निमाय सिर्फ 14 साल का लड़का था। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, क्योंकि उसका आने का स्टाइल भी बहुत अलग था, वो जब प्रवेश एंट्री मारता है तो अकेला नहीं आता था, उसके पूरे बड़े पूरा एक जुलूस होता था केशव कश्मीर का, हाथी, घोड़े, पालखी, ब्राह्मण लोग सब मंत्र उच्चार कर रहे थे, संगीत का वाद्य, ये आवाज, ये और इतना आभूषण, इससे इतना उसकी सोचो उसके दिमाग में क्या होगा, इतना विज्ञान था, विद्वान था, कोई सामने आ ही नहीं सकता है। तो निमाय उन अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठकर ग्रामर, व्याकरण में उनका बहुत एक्सपर्टीज थी। तो एक ने आके बताया ऐसा ऐसा आ रहा है। तो निमाय सोचने लगे और उनको बताया, देखो जो एक पेड़ अच्छा फल होता है ना, तो हमेशा पेड़ झुकता है, लेकिन वो झुकता नहीं है तो फिर वो ज़्यादा समय की बात है, भगवान उसे उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इतना सुना था, वो भी थोड़ा सा ये हो गया, क्या होगा अभी आएंगे। लेकिन निमाय पंडित सोचने लगे कि ये व्यक्ति का अगर मैं खुलेआम सबके सामने अगर इसका मैं इज्जत निकाल दूंगा तो ये आत्महत्या कर लेगा, ये जिएगा ही नहीं। और यही नहीं, जैसे ही इसकी हार होगी इसके जितने सारे साथ लोग हैं सब लूट लेंगे इसको। तो इंतजार कर रहे थे कि इसको कैसे करे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन शाम को केशव कश्मीर ने सुना था कि निमाय पंडित जैसा कोई है यहाँ पे, लेकिन व्याकरण का स्कॉलर है, छोटा लड़का है लेकिन बहुत नाम है, ऐसे सुना तो कैरी नहीं की। तो एक दिन गंगा के तट पर वो ऐसे आ रहे थे तो देखा कि निमाय बैठा एकदम इतना सुंदर, यू नो, घुंघरू वाले बाल और वर्ण एकदम स्वर्ण वर्ण और थाट से बैठा, और दूसरे लोग बैठे। तो उसने उनको पूछा किसी से, हाँ ये निमाय पंडित, ओ तो ये तो तुम हो निमाय पंडित। तो निमाय पंडित, हाँ मैं हूँ निमाय पंडित, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत व्याकरण के बहुत बड़े स्कॉलर हो। हाँ लेकिन मैं तो सिर्फ व्याकरण की स्कॉलर हूँ, मुझे क्या मालूम है, लेकिन तुम तो केशव कश्मीरी दिग्विजय, हाँ तुम्हारे बारे में तो इतना सुना है कि तुम सरस्वती स्वयं तुम्हारे जमान में है, तो हाँ वो तो है, ऐसे सुनने के बाद वो क्या करें, हाँ वो तो है। अच्छा देखो, हम तो बहुत ही मामूली से लोग हैं, हम लोग ये थोड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, लोग हम लोग व्याकरण पढ़ाते, एक केशव कश्मीर अकेले थे, हाँ याद रखना कि ये जो गंगा है, गंगा के ऊपर तुम कुछ ऐसे बताओ कुछ हमें गंगा के बारे में, तुम तो इतने विद्वान हो। तो केशव कश्मीरी, ठीक है चलो, हाँ कैसे भी। तो उन्होंने उसी समय, ऐसा नहीं कि पहले से वो कुछ पाठ करके रखा था, उन्होंने उसी समय उन्होंने एक के बाद ऐसा एक घंटे में 100 श्लोक को ऐसे बोलते गए। और ये सब जो व्याकरण के जो विद्यार्थी थे वो लोग सुन रहे, ये क्या हो रहा है। 100 श्लोक हो गए, केशव कश्मीरी एकदम घमंड से हाँ देखने लगे। तो ये विद्यार्थी लोग सरे बाप रे क्या है, एकदम राम राम राम, ये क्या है कुछ। तो निमाय ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये जो तुमने बताया ना, ये सिर्फ 2 लोग ही समझ सकते हैं इसको, एक तुम और तुम्हारी सरस्वती, हमें तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर सिर्फ एक काम करो, इतने श्लोक है ना, कम से कम एक श्लोक का तो हमें अर्थ बताओ। ऐसे निमाय पंडित ने उसको कहा एक श्लोक। तो केशव कश्मीर बहुत घमंड चल, कौन सा श्लोक, क्योंकि उसने तो 100 श्लोक बोले थे, अभी तो नेचुरली कौन सा श्लोक। जब उसने कौन सा श्लोक बोला तो निमाय पंडित ने सिलेक्ट कर, दिस इज 16th chapter 41। ये इज इट करेक्ट नो, या राइट, या तो निमाय पंडित कौन सा श्लोक बोला, तो केशव कश्मीर ने कभी अपेक्षा नहीं किया था, निमाय पंडित ने ये श्लोक, महात्वम गंगाय सततम इदम अबाति नितरम यद एष श्री विष्णु चरणा कमलोत्पति सुभागा द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुरा नरेरार्च्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसी विभवत्यद्भुत गुणा। आपको क्या लगा केशव कश्मीर ये श्लोक सुना जैसे कैसे क्या क्या किया होगा केशव कश्मीर ने? एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मैंने तो 100 श्लोक तूफान की तरह बुलाए, तुमने ये कैसे ये श्लोक याद किया? तो निमाय पंडित कहते हैं, अरे जैसे तुम सरस्वती के कृपा से तुम विद्वान हो इतने, तो बस मैं श्रुतिधर हूं, मैं एक बार सुन लेता तो मुझे याद रहता है। केशव कश्मीर को समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी इन्होंने ऐसे मिला ही नहीं किसी से। अच्छा क्या बात है फिर? तो निमाय पंडित कहे, देखो तुम्हारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन इसमें दोष भी है। केशव कश्मीरी ने कभी ऐसा सुना ही नहीं किसी से, कभी किसी ने, कभी सोच सकते हैं कोई कोई बोले कि तुम्हारे इसमें दोष है, तो जैसे ही दोष है सुना तो क्रोधेर, तुम्हें क्या मालूम है, तुम तो व्याकरण के टीचर हो, तुम्हें ये सब ये शास्त्र के बारे में तुम्हें क्या मालूम, तुम सिर्फ वहीं पर रहना, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं। नहीं नहीं, तुम गुस्सा मत करो निमाय पंडित को, लेकिन अच्छे सब बताया उन्होंने, अच्छे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में, हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में, हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक दोष बताया यहाँ पे है ना, भवानी भरतूर। हाँ, केशव कश्मीरी को बोला, भवानी का मतलब क्या है? शिव जी की पत्नी। भरतूर का मतलब क्या है? पति। तो क्या शिव जी के पत्नी के पति? अरे शिव जी के पत्नी के पति का मतलब है शिव जी की पत्नी के अनेक पति हो गए। तो ये भवानी भरतूर के ऊपर निमाय पंडित ने, तो ये तुम्हारे अलंकार इसको शोभा नहीं देता, ये गलत है। केशव कश्मीरी के साथ अभी तक किसी ने ऐसा विवाद नहीं किया है, उनके मुंह से कुछ नहीं आ रहा था। तो निमाय पंडित ने ऐसे बहुत सारे श्लोक है, उसमें बहुत सारे गलतियां हैं, हाँ, लेकिन और एक श्लोक बताए थे इसके बारे में कुछ बोल सकते हो तुम, यहां भी गलती है। तो केशव कश्मीरी के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है, वो बोलने की प्रयास कर रहा है लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा है। तो तभी वो सोचने लगे क्या हुआ, शायद मदर अपने सरस्वती मेरे से बहुत नाराज है, मैंने कुछ अपराध किया होगा। तो ये देखकर विचलित हुए और वो जो स्टूडेंट थे सब हंसने लगे, एकदम हंसने लगे केशव कश्मीर को, इतना बड़ा हाँ इसका पूरा इज्जत वहां पे। तो निमाय पंडित समझ गए, तो उनको ने देखो तुम बहुत थक गए हो अभी, कोई बात नहीं, बहुत सारे अच्छे भी हैं तुम्हारे इसमें, तुम जरा पढ़ के आना, कल हम फिर से मिलेंगे, कल हम फिर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। केशव कश्मीरी चला गए, घर गए अपने, घर प्रवेश किया ऐसे ही, कहाँ जाएंगे पहले, घर प्रवेश किया ऐसे पहले सरस्वती के पास गए और सरस्वती से अपने प्रार्थना करने लगे, क्या किया मैंने, क्या गलती किया मैंने, ऐसा क्या किया। फिर उसी भाव में वो सो गए, सपने में सरस्वती आ गए। इस बार सरस्वती आकर कहे, हाँ वहाँ पे ईश्वरपुरी ने मूर्ख खाए, इस बार सरस्वती कहती है केशव कश्मीरी तुम जानते हो कौन है वो? मैं उनकी सेविका हूं। तो ये जो सरस्वती है, इसमें हमें जानना चाहिए कि एक जो जैसे मुझे याद है, मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था तो मैं सरस्वती का फोटो रखता था। ऐसा लगता है कि सरस्वती की फोटो रखने से हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी ना। तो एक भाव है जो सरस्वती की अगर हम याचना कर रहे हैं कि मेरे, तो वो देंगी हो, लेकिन भौतिक संसार का जो ज्ञान है वो सही सच्चा ज्ञान नहीं है। लेकिन सच्चा सरस्वती जो है वो ज्ञान देगी सच्चा, क्योंकि वो तो कृष्णा की भक्त है, डिवोटी है। तो लेकिन अगर कोई घमंड से कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ भौतिक चाहिए, तो वो पूरा उसको आवरण में डाल देती है, बाबा ठीक है। तो उस आवरण में वो कभी कभी वो जैसे केशव कश्मीरी जैसा एकदम फेमस भी हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब सरस्वती आए, क्योंकि वो निस्सहाय भाव से प्रार्थना, मुझे क्यों आया ऐसे अपराध, मैंने क्या किया आपसे, तभी उन्होंने अपना सच्चा, जो सच्चा शक्ति है सरस्वती का, वो दिखाया कि ये जो है मैं उनके कृपा से ही मैं कुछ जानती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। ये सब अवतारों की यही मूल है, नरसिंह देव, मत्स्य अवतार, ये सब सुन रहा है केशव के सपने में, सुन रहा है सपने में, सब दिख रहा है। सो जैसे इस केशव कश्मीरी, हाँ, तो तुरंत कहती है सरस्वती, कल जाओ और जाकर उनकी आश्रय ले लो। तो तुरंत केशव कश्मीरी जाग जाते हैं। तो ये जागने के बाद तुरंत उसको समझ में आता है कि क्या है अपने सब, हाँ, वो जो घमंड था वो टूट जाते हैं और जाकर सीधा उनके आश्रय लेता है। तो निमाय पंडित सुबह के समय देता है, अरे केशव पंडित दिग्विजय, तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं तो व्याकरण का एक टीचर हूँ, क्योंकि पिछले दिन तो खाली वही हुआ था ना डिस्कशन। तो तभी केशव कश्मीर कहते हैं, अभी आप मुझे मूर्ख मत समझो, मैं मूर्ख नहीं हूँ, अभी मैं सब जानता हूँ आप कौन है, और मैं ये भी समझ गया कि मैं कौन और मेरी क्या मूर्खता है। पूरी तरह से उन्होंने आश्रय लिया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो सच्चा ज्ञान क्या होता है। जैसे हमारे शिक्षाष्टकम के जो श्लोक हैं, चेतो दर्पणम आर्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। विद्या वधु, सच्चा विद्या के वधु है, यानी हमेशा ज्ञान। और सच्चा विद्या क्या है, हरिनाम। तो विद्या अपने आप साथ में वधु बोल के है, उसकी जीवन है वो हरिनाम का जीवन। तो ये सच्चा ज्ञान है, ये सरस्वती के द्वारा केशव कश्मीरी को पता चलता है। उसके बाद आश्रय लेने के बाद निमाय पंडित बोलते हैं, ठीक है तुमने पहचान लिया मुझे, लेकिन ये किसी को नहीं बताना, अगर किसी को बताओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो केशव कश्मीरी उस दिन के बाद अकेले में, किसी को नहीं मालूम, सब कुछ अपना जो कुछ सब त्याग कर निम्बार का संप्रदाय में जाकर आश्रय लेते और बहुत बड़े संत हो जाते, यही केशव कश्मीरी। तो इस लीला में जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भौतिक संसार के जो ज्ञान है वो किसके साथ तुलना किया है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होना चाहिए। ईशोपनिषद में बताया है कि हमें भौतिक संसार के भी ज्ञान मालूम होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते भौतिक संसार के ज्ञान कुछ ज़रूरत है, हम भी तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं भौतिक संसार के, लेकिन उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है ये नहीं भूलना चाहिए। कि भगवत प्रेम की तरफ नहीं ले जा रहे हैं तो वो ज्ञान वेस्ट कुछ नहीं है। हाँ, जयदेव महाराज कभी अपने क्लास में उनके बोलते हैं, यस मेटेरियल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत है हमें जानना चाहिए। हाँ, ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने बजे निकल रही है, अगर ये मालूम नहीं होगा तो ट्रेन छूट जाएगा तुम्हारा, तो ये भी नॉलेज है ना। तो इस तरह भौतिक, ये नहीं कह रहे हैं कि हम भौतिक संसार के जो जो स्तर पर हैं, कोई भी हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन उस ज्ञान से वो किस तरह से सच्चे ज्ञान की तरफ अगर नहीं बढ़ रहा है तो तो फिर नहीं, तो इसलिए केशव कश्मीरी सिर्फ घमंडी बढ़ रहा था उसका, पूरे माया में ही था वो, तो उसका उद्धार किया। तो यह है निमाय पंडित, इस तरह से किया बहुत ही। तो निमाय केशव कश्मीर पता चल गया कि आप साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मेरा क्या बोलते हैं वो एक डिग्निटी को बचा के रखा और मेरे अहंकार को स्मैश किया। अगर पब्लिक में हो जाता था तो ये कौन कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए निमाय पंडित के बारे में वो, तो इस तरह कि हम जो ये गौर पूर्णिमा में महोत्सव में ये जो अवतार हैं ये कोई साधारण अवतार नहीं है। हाँ, ये शुरुआत के श्लोक में हम बार बार उसे वही बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी क्यों उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ समर्पयितुमुन उन्नतोज्ज्वल रसम, सबसे ऊंचा जो रस है वो सब लोगों को देना चाहते थे। हाँ, सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन, लेकिन हमें ऐसे नहीं समझ आया कि अरे नाम और कीर्तन में सब कुछ है, नहीं। भागवत का श्रवण करना चाहिए, हम पढ़े लिखे नहीं है तो श्रवण तो करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उसके साथ साथ ये हरिनाम ये युग धर्म है। इसलिए उन्होंने प्रकाशन सरस्वती को कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, सिर्फ बताने के लिए कि हरिनाम की महिमा की। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक खाली उन्होंने लिखे थे, दूसरे सब उनके अनुयाय के थे, जो हम लोग रोज यहाँ पे सुबह गाते हैं शिक्षाष्टकम की। ये भी एक प्रार्थना है किस तरह से करना चाहिए हरिनाम का, कि हरिनाम जो भगवान से अभिन्न है वो हम सबको इतने आसानी से उपलब्ध हैं, तो कैसे समझे उसको। एक तो उनके सब गुण हैं कि क्या क्या होता है हरिनाम प्रभु, लेकिन नम्रता कि मेरे हृदय में कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सब शक्ति है लेकिन मेरे हृदय में कोई आकर्षण नहीं है, कभी आएगा ये आकर्षण। और वो त्रिनाद अपि का जो भाव है कि जो सम्मान, खासकर दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना और दूसरों को सम्मान नहीं करना, ये नम्रता, ये बर्दाश्त करना, सहनशीलता, और उसके साथ किस तरह का प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, भगवान के सामने आकर, हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों, और उसके बाद 5वां श्लोक, हाँ, अनंद तनुज किंकरम, किसी तरह से भगवान मुझे नहीं मालूम मैं कैसे यहाँ पे इस भव सागर में, हाँ, जन्म मृत्यु के सागर में कितने जन्मों से मैं फंसा हूँ यहाँ पे, आप मुझे आकर उठाइए और आपके चरण कमल में एक कण की तरह रखिए। हाँ, सिर्फ अपने ने बहुत सारे, भगवान के चरण में बहुत सारे कण हैं, उसमें मैं भी एक, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, मेरे लिए नहीं, नहीं। इतने अनगिनित है उसमें, थोड़ा सा मुझे भी स्नान, इस तरह का भाव में। हाँ, नयनम गलदश, कभी होगा ऐसा, कभी होगा कि मेरे हृदय में आंसू आएंगे। हाँ, वो नृत्य की बात छोड़ो, एटलीस्ट दिल तो थोड़ा सा पिघल जाएगा, दूसरों के दुख के प्रति थोड़ा सी दया आएगी, थोड़ा वेदना आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत है। हाँ, नहीं तो अपने वासु घोष का जो भजन गाया, पाशा न, हाँ, What is he saying that? When will my heart melt? यदि गौर ना होए तो ये चैतन्य महाप्रभु की, he can do that if अगर हमारा approach इस तरह से, तो ऐसे, and last of course पूरी तरह से समर्पण, नयनम गलद अश्रुधार के बाद युगायितम, यानी भगवान के, अभी तो हमें, हम तो वैदी भक्ति साधना भक्ति में बार बार याद दिलाना पड़ता है, बाबा सुबह उठो, भगवान का नाम जाप करो, वो करो, ये मत करो, ये नहीं करना है, वो करो। हाँ, फिर पूरी तरह से समर्पित, यानी आश्लीष्य वा पादा, पूरी समर्पित, अभी आपको क्या करना है, ये जो भाव है उस भाव में भगवान का नाम का जाप होता है, तभी उन्नतो ज्वल रसम, नहीं तो बहुत 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 हमारे समझ के बाहर है ये रस, और ज्यादातर तो गलत फहमियां है, है ना। लेकिन ये जो माधुर्य रस को सबको देने के लिए, आसानी से देने के लिए उन्होंने किया, इसलिए ये अवतार को नमो महावदन्याय कहा गया। ये है गौरंग माप। तो इस संदर्भ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन बराबर 100 साल पहले मिला, 1922, दिस इज 2022, तो ये इंस्ट्रक्शन उनको मिला, वो भी डायरेक्टली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये कहा कि तुम विद्वान हो, अंग्रेजी जानते हो, ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो घोषणा है, मैसेज है, इसे तुम्हें प्रभुपाद कभी भूले नहीं। ऑफकोर्स उनका भी उन्होंने पराजय कर दिया प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा कि कैसे हो सकता है, हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो भक्तिस्थान सरस्वती कार्यकर्ता, ये तो सरकार तो बदलती रहेगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, लेकिन ये इमरजेंसी है, इसको तुरंत स्वीकार करना है और तुरंत इसके लिए। प्रभुपाद कुछ समय लगा उनको, 40-45 साल लगा, उसके बाद जब उन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद पीछे देखना नहीं। अभी 50 साल से ज़्यादा हो गया हरे कृष्ण संस्था का स्थापना होने के बाद, लेकिन प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सच्चे सेनापति है। हाँ, प्रभुपाद जो गुरु तत्व है, जो नित्यानंद है, जब चैतन्य लीला में नित्यानंद थे, नित्यानंद गुरु तत्व प्रभुपाद के रूप में हम सबको उन्होंने ये छोड़ कर गए, इस गुरु तत्व के माध्यम से हम सब लोगों को ये मिल रही है, तो ये कोई साधारण नहीं है। इसे हम एक कृतज्ञता से स्वीकार करके, जो कुछ ये लीला में हम सीख रहे हैं उसको याद कर हम अगर पालन करते हैं, तो निश्चित ये जो ब्रज भक्ति है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभुपाद की अनुयायी भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसके कारण हम लोग गोवर्धन इको विलेज में हैं, कुछ लोग अतिथि के रूप में आए हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो कोई ये साधारण, इसका मूल बहुत ही अंदरूनी, बहुत ही अंदर है, जो कि ब्रज भक्ति का जो भाव है, जो यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, आपको दिखता है ना यहाँ, ये सब ब्रज भक्ति का भाव जो है, और ये आध्यात्मिक स्तर पर जितने वैकुंठ लोक हैं उसके बीच में एक ऐसा लोक है गोलोक वृंदावन, और ये सबसे बड़ा रस भगवान कृष्ण के साथ जो कुछ भी ग्वाल बाल या वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव का जो रस है, वो रस भौतिक आध्यात्मिक के सबसे श्रेष्ठ, उसको यहाँ पे एकदम आसानी से नीचे लाकर, लेकिन जो कुछ भी आसानी से मिलता है उसका दाम बहुत कम रहता है ना, इट्स नॉट वैल्यूड, इट्स वेरी चीप। सो इसलिए ऐसे विषयों को बार बार समझिए। और तो इस तरह से गौर पूर्णिमा बहुत ही एक विशेष, बहुत ही श्रेष्ठ अवतार भगवान कृष्ण ही करुणा के कारण, करुणा अवतार, अनार्पितम चरित करुणा अवतीर्ण कलो, कलो इस कलयुगा, कलयुग में अवतार लिया उन्होंने सिर्फ करुणा के बारे। बहुत समय हुआ है, ये तो करते हैं वैदी भक्ति करते हैं, क्या इनको वैकुंठ भाव, नहीं इस बार मुझे देना है उनको, मुझे कुछ मेरा जो खास स्वीटनेस है वो मैं देना चाहता हूं। और ये सिर्फ 500 साल पहले हुआ है, ऐसे प्रभुपाद जस्ट 500 इयर्स बैक, दिस इज अवर ब्लेसिंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कई दिनों से कथा सुन रहे हैं, तो आज लास्ट ये गौर पूर्णिमा का कथा, इसके साथ कल से भागवतम शुरू होगा या नेक्टर ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। हरे कृष्णा, श्रील चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य भागवत की जय, भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर निताय की जय, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, हरी बोल।